आज आप मधुबन के सेवाधारियों को हम बिना टिकट अमेरिका की सैर करवा रहे हैं, क्योंकि टिकट लेने में तो छोटी उम्र के कुमार कुमारियों को तो वो देते ही नहीं कि वहीं ना चले जाएं, बड़ी प्रॉब्लम आती, पैसा बहुत लगता है। तो एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, आपने सुना होगा यूएन, वो आज से 53 साल पहले बनाई गई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, एटम बम वगैरह चले, उस समय तो एटम बम को बहुत खतरनाक गिनते थे, पहला एटम बम बना था, तो दो एटम बम चले जिससे सेकंड में ही लाखों लोग जल गए, और उससे उनको बहुत भय हुआ कि ऐसा ना हो कि दुनिया भस्म हो जाए। तो उन्होंने एक संस्था बनाई यूनाइटेड नेशन, ये भी आगे के लिए एटम की लड़ाई ना हो, लड़ाइयां ना हो, उसके लिए दुनिया को कुछ करना चाहिए। 53 साल के बाद भी लड़ाइयां बंद नहीं हुई, एटम की लड़ाई तो नहीं हुई क्योंकि उससे सबको भय है कि जिस दिन होगी उस दिन फिर खात्मा है, लेकिन बाकी लड़ाइयां चलती रहती हैं, और उसकी बचाव के लिए लोग उसमें जाते हैं और कई प्रकार के सुझाव वगैरह रखते हैं। अब यूनाइटेड नेशन का ये हाल हो गया है कि उसको लड़ाई को रोकने के लिए भी फौज रखनी पड़ती है, यानी शांति स्थापन करने के लिए भी सेना रखनी पड़ती है, और कई देशों से वो सेना मांगते हैं, भारत से भी मांगते हैं, किसी जगह लड़ाई हो जाती है तो। इस साल क्योंकि ये संवत 2000 शुरू हुआ है, नया जो मिलेनियम, तो 2000 सन चल रहा है, तो हर एक को ये है कुछ नया किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो यूनाइटेड नेशन वाले भी वैसे सितंबर के महीने में 5 सितंबर को शांति दिवस रखते हैं हर साल, और उसमें उससे पहले वो बुलाते हैं सब देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टरों को, कोई ना कोई फिर से दोबारा से इस बात को रिन्यू करने के लिए कि विश्व में युद्ध ना हो। इस साल उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो हम करते ही आए हैं, नया क्या करें। तो उनको किसी ने राय दी कि दुनिया के 83% यानी 83% लोग किसी ना किसी धर्म को मानते हैं किसी ना किसी रूप में, और ये बहुत बड़ी शक्ति है धर्मों की, और अगर इनको साथ मिलाया जाएगा, क्योंकि धर्म वाले आपस में भी लड़ते रहते हैं, बहुत सी लड़ाइयां धर्मों के नाम पर भी होती हैं, जैसे अभी भी लंका में हो रही है, रशिया में हो रही है, समझो हिंदू पाकिस्तान की भी, कश्मीर की जो है, धर्म के नाम पर ही हो रही है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि धर्म वालों को साथ मिलाया जाए। तो पहली बार उन्होंने एक विश्व शांति धर्म और आध्यात्मिक नेताओं का शिखर सम्मेलन रखा, और वो सम्मेलन राजनीतिक नेताओं के सम्मेलन से पहले रखा। वो सम्मेलन जो था अगस्त की लास्ट चार दिन में 28, 29, 30, 31 को रखा गया न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन में। तो हर देश से उन्होंने कहा अपने अपने धर्म नेताओं को भेजो, तो भारत से 108 धर्म नेता चुने गए जो कि उसमें गए, और उस सभी धर्मों के समझो वो नेता उसमें शामिल थे, और सारी दुनिया के 75 धर्म हैं, बड़े बड़े और छोटे, उसके सब मिलाकर के समझिए 1500 नेता और कुछ उनके फॉलोअर, 2000 लोग की ही वो हाल है, तो उसमें वो गए सब। तो भारत के नेताओं ने सोचा, आपस में फैसला किया कि हमारे देश में भी भेदभाव है, लेकिन हम वहां जाके एक ही आवाज से बोलेंगे भारत की संस्कृति का, ताकि लोगों में फूट का पता नजर ना आए। तो उसमें ज्यादातर हिंदू नेता थे, फिर भी बुद्धिस्ट भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, और जैन भी थे, और कुछ संस्थाओं के भी थे, इस तरह से नेता थे। तो उन्होंने इकट्ठा संगठन बनाया था, एक विश्व हिंदू परिषद है, वो हिंदुओं का है, उसको इसका इंचार्ज बनाया था कि उसके वो लोग ले जाएंगे, किसी के पास किराया नहीं है तो किराया भी दे देंगे, वहां प्रबंध करेंगे, और उससे पहले उन्होंने 2-3 मीटिंग भी किए थे, एक मत हो जाए। अब हम लोग जो है ब्रह्मा कुमारीज, हमें निमंत्रण सीधा न्यूयॉर्क से आया था, हमें उनके ग्रुप्स के अंदर नहीं थे हम लोग, नाम उनके ग्रुप के अंदर रहना चाहते थे, क्योंकि उनके ग्रुप के अंदर रहो तो उनकी हर बात को हां करो, एक ही मत से उन्होंने बोलना है। तो उनकी मत हमारे से ना मिले, हमारी तो आजादी खत्म हो जाए। इसलिए हम न्यूयॉर्क से दादी जी को निमंत्रण आया था, दादी जी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, उनकी जगह पर फिर मुझे भेज ड्यूटी लगाई गई, इंडिया से आप जाओ। वो भी मेरा भी निमंत्रण न्यूयॉर्क से आया था और मैंने हवाई बुकिंग भी अपनी अलग कराई हुई थी। लेकिन हुआ ऐसा कि हवाई जहाज की टिकट जो थी वो इन लोगों ने इकट्ठी ली थी, 108 नेताओं ने। पहले तो सोचा था एक ही प्लेन में सब जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन गिर गया तो सारे के सारे हिन्दुस्तान के नेता खत्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि दो दो प्लेन में जाएंगे, आधे आधे करके। अच्छा, आधे तो बच जाए। अच्छा, तो कम से कम 57 नेता, उनका टिकट सस्ता था, इकट्ठा लिया हुआ था। तो मैंने कहा भी हम भी आपके साथ ही जाएंगे, आखिर एक ही जगह जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 57 धर्म नेता हिंदुओं के हम लोग इकट्ठे चले। उन्होंने प्रबंध किया हुआ था, वहां 3 होटल में रहने का था, तो हर एक को यहां से ही सामान के साथ हरा रिबन, लाल रिबन, पीला रिबन बांध दिया था। अब मैंने कहा हम आपके साथ जाएंगे तो आप जगह तो हमें देंगे ही। बोले हाँ हाँ, आपको भी देंगे। अच्छा, अब प्लेन का दृश्य ऐसा था जैसे छोटा सा कुंभ मेला होता है, क्योंकि पूरा सेक्शन एक प्लेन का इनसे ही भरा हुआ था। पहले से कह दिया गया था कि दूध और बिना कटे हुए फल नेताओं को दिए जाएंगे, तो उन्होंने दूध के कैन और फल रखे हुए थे। इसके अलावा उनका जो इंचार्ज था वो भी, जैसे हम टोलियां बनाते हैं तो डब्बे में भरकर ना तरह तरह की टोलियां, बालू शाही, ये वो ले गए हुए थे। तो वो हर घंटे के बाद आ जाते थे, महाराज जी मुझे भी देते थे, महाराज जी ये लीजिए। अच्छा, इस तरह से वातावरण था। फिर वो क्या करते थे, हर 15 मिनट के बाद भारत माता की जय सारे प्लेन में है, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। उसमें अंग्रेज भी पैसेंजर थे, वो सब, बाकी उसके हवाई जहाज का स्टाफ तो इंडियन था, वो तो इन बातों को समझता है, लेकिन अंग्रेज पैसेंजर बड़े हैरान थे। एक तो गेरुए कपड़े वाले, तरह तरह के, एक महिला भी थी, तरह तरह के वो थे, जैनी थे। बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था। आखिर करते करते वो लंदन पहुंचे, तो लंदन में एक घंटा उतरना पड़ता है, हवाई जहाज की सफाई की जाती है। तो सब लोग उतर आए, तो वहां के जो इंडियन पैसेंजर थे वो मेरे से पूछे, इतने महात्मा आए हैं, इनमें से बड़ा कौन है, हम किसका आशीर्वाद लें। तो मैं थोड़ी कहता मैं बड़ा हूं, तो मैंने कहा सब बड़े हैं, जिसका तुम्हारा दिल करे वो जाके उनसे ना, जैसे भक्त लोग होते हैं उनसे आशीर्वाद लेते रहे। इस तरह का हमने क्या किया कि सब महात्माओं से परिचय प्राप्त किया। तो उसमें से 53 में से 14 के करीब तो हमारे वहां आए हुए थे। ये जो रथ यात्रा में शंकराचार्य आए थे वो भी उसमें थे, एक दो पहले धर्म सम्मेलनों में आए थे वो भी उसमें थे, कहीं ना कहीं 13-14 तो आए हुए थे, और 10-12 और भी थे जो संस्था को जानते थे। फिर भी हमने सबसे वहां लंदन में एयरपोर्ट पे खाली बैठे थे, एक घंटा परिचय प्राप्त किया। तो सब ये कह रहे थे अब आप धर्म सम्मेलन रखो, हम आएंगे आबू में, जरूर आएंगे, इस तरह से कर रहे थे। एक दो मेहमा भी कर रहे थे जो होके गए हैं। फिर चढ़ गए प्लेन में। अच्छा, फिर न्यूयॉर्क पहुंचे, तो न्यूयॉर्क में भी उन्होंने हिंदू सम्मेलन धर्म वालों के वॉलंटियर, जैसे हमारे वर्कर होते आए हुए थे, अच्छे अच्छे घरों के, तो 30-40 लोग आए हुए थे जो हाथ जोड़कर सबको हार पहना रहे थे, सबका सामान उठा रहे थे, फिर बसों में ले जा रहे थे, जिस जिस होटल की बसें थी। एक वहां बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया होटल जो न्यूयॉर्क का है वो इस धर्म सम्मेलन वालों ने किराए पर लिया हुआ था, क्योंकि 2 दिन कॉन्फ्रेंस यूएन में चलनी थी, 2 दिन उस होटल में चलनी थी, तो उसमें सभी धर्म नेताओं को ठहराया हुआ था। उसके साथ 2 और होटल थे जिनमें भी धर्म नेता भारत के ठहराए हुए थे। तो मुझे भी उन्होंने कहा आप अपना नाम रजिस्टर करा दो। पहले मैंने सोचा कि इनके साथ रहेंगे तो फायदा ही है, रेडियो वाले आएंगे, टीवी वाले आएंगे, कोई मिलना मिलाना होगा तो इनके साथ ही होगा। लेकिन मुझे वो लेने के लिए सेंटर वाले भी आए हुए थे, उन्होंने बताया कि दादी जानकी का एक कमरा हमने पहले से बुक करा दिया हुआ उस होटल में, तो दादी जानकी, जयंती बहन, दादी की ब्राह्मणी वहां रहेंगे, तो आप तो अभी तो सेंटर पर चलो। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने उनको लिखवा दिया, नाम लिखवा दिया कि हम कल आएंगे होटल में, हम सेंटर पे चले गए। तो फिर सेंटर में हमने देखा कि सेंटर में रहना हमारे लिए अच्छा है, तो हम सेंटर में ही रहे, क्योंकि वहां की मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली, उसने भी रोज जाना होता था। दिल्ली की शांति बहन, वो भी वहां गई हुई थी, उसको भी पास मिल गया था उसका कॉन्फ्रेंस का, उसने भी जाना होता था। तो हम लोग घर से ही जाते थे, जानकी दादी वहां रहती थी, खाना हम लोग वहां इकट्ठा खा लेते थे और प्रोग्राम चलता था। अब पहले दिन जब यूएन में गए, कॉन्फ्रेंस हुई, तो हमारे उसमें 12 डेलीगेट थे। एक तो मैं था, इंडिया से तो मैं था, फिर न्यूयॉर्क से गायत्री बहन है जो वहां दफ्तर संभालती है यूएन में, हमारा अंकल स्टीव नरेन की बेटी। एक जूलिया बहन है, वो भी दफ्तर संभालती है वहां। फिर न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन है, फिर दिल्ली की शांति बहन है, फिर इसके अलावा लंदन से जयंती बहन थी, फिर परवीना बहन दादी जानकी की ब्राह्मणी, फिर दादी जानकी थी, फिर एक ट्रिनिडाद से हरि भाई है, वहां भी हिंदुओं ने सम्मेलन किया था, उसको बुलाया था, वो भी आया हुआ था। एक हेलन बहन है इंडोनेशिया की, वो भी आई हुई थी। तो दो बहनें अफ्रीका की आई हुई थी। इस तरह से हम लोग 12 लोग थे। हम लोगों ने क्या किया कि 12 एक ही लाइन में बैठते थे, ताकि सफेद वस्त्रधारी थे, वहां तो बहुत रंग बिरंगे मुसलमान पादरी टोपियों वाले अनेकानेक तरह के, अगर आपने देखना हो, यहां थोड़ा सा उसका वीडियो आया हुआ है, वो बहुत उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो खैर, पहले दिन का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें ही ये था कि वहां सेक्रेटरी जनरल जो था यूएन का, उसने भाषण करना था और सब धर्म नेताओं ने, बड़े बड़ों ने परिचय देना था अपना संदेश। जब हम वहां बैठे तो ऐसे लग रहा था कौरवों की सभा है ये, और सब कौरवों के जैसे द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ये सब बैठे हैं और धर्मों वाले भी बैठे हैं। तो उस वक्त हमें ये ख्याल आया कि ये सब आत्मज्ञानी बैठे हैं और ये बच्चे बाबा के परमात्म ज्ञानी बैठे हैं, और परमात्म ज्ञानी आत्मज्ञानियों की सभा में घुस तो गए हैं ना किसी तरह से। और फिर हमें ये ख्याल आया कि बाबा ने कहा हुआ है कि ये धर्म नेता बाबा के यज्ञ से संदेश लेंगे। अब हमें क्या पता इस समय किस रूप में क्राइस्ट है, कौन सा मोहम्मद है, कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ ढूंढते फिरे उसको, अरब में ढूंढे, कहाँ ढूंढे, टर्की में ढूंढे, बुद्ध को कहाँ ढूंढे, इंडोनेशिया में ढूंढे। तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति की है कि उनको सबको एक जगह इकट्ठे कर दिया है ना, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब जो जिस रूप में होगा संदेशा तो ले ही जाएगा। ये हमारे मन में ध्यान आ रहा था कि हमारा बाबा कितना युक्तियुक्त है कि हर काम को सहज और सस्ते ढंग से और ऐसे तरीके से करवा देता है कि उसका कहना भी हो जाता है और मेहनत भी नहीं लगती। तो सचमुच वो सीन फिर आया जबकि गायत्री की जो वहां रहती है हमारे दफ्तर में न्यूयॉर्क में, हमारा संस्था का पक्का दफ्तर है वहां, वो कहती मुझे ख्याल आया करता था कि कोई दिन ऐसा आएगा जब इस यूएन के असेंबली के सेशन से हमारी दादियां बोलेंगी। तो कहती आज मेरा ये सपना साकार हो रहा है, क्योंकि उस जगह से केवल राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर वहां से बोलते हैं। ऐसी वो स्थान है, सारे वर्ल्ड का प्रसिद्ध स्थान है। तो इस तरह से था। तो सचमुच ऐसा मुझे भी एक बार ख्याल आया था जब दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम बना था, बहुत बड़ा स्टेडियम बना, तो उस वक्त बहनों को एक सम्मेलन में महिलाओं के ग्रुप में बुलाया गया, छोटे ग्रुप में, हम भी गए। उसमें एक राष्ट्रपति ने ओपनिंग करनी थी, प्राइम मिनिस्टर ने क्लोजिंग करनी थी, तो सिंधियों वगैरह ने अरेंज किया हुआ था। तो हमारे दिल में आया कि ये इतना बड़ा स्टेडियम ब्रह्मा कुमारियों का भी किसी दिन इसमें होगा। तो अभी 2-3 साल पहले हमारी डायमंड जुबली उसमें हुई, तो प्राइम मिनिस्टर भी आया, प्रेसिडेंट भी आया, हमारा ही था। इसी तरह से उस गायत्री को भी ये ख्याल था कि वर्ल्ड फोरम है, इसमें हमारी दादी बोले। तो वो सीन भी एक बहुत बड़ा देखने वाला, बहुत ही सुंदर दृश्य था कि 1200 नेता और बाकी उसके चेले और समझो 2000 जितना वो हॉल है, कभी कभी सरकार की मीटिंग में भी नहीं भरा हुआ, फुल पैक था, रंग बिरंगे साधु महात्मा दुनिया के, जैसे एक सारे वृक्ष कल्प वृक्ष पे इनको टांगा हुआ हो और सब उसमें जमा हो जाएं, वो सीन देखने वाला था। उसमें जानकी दादी को 3 मिनट का फर्स्ट डे ही संदेश देने का मौका मिला। तो जानकी दादी गई और जयंती बहन भी गई, तो सबको ये कहा गया था तीन मिनट, क्योंकि सबने बोलना था, तीन मिनट से बढ़ना नहीं। तो जानकी दादी ने उसका अगर आप फोटो देखेंगे, बहुत जैसे बाबा का शुक्रिया करती हुई और अपनी जिम्मेवारी को समझती हुई कि आज मुझे क्या मौका मिला है, कैसे इनको संदेश देना है। दादी जानकी वहां जाके खड़ी हो गई, सबको नमस्कार किया, उसके बाद उन्होंने बोला। तो बोला ये कि भाई जो लोग आप सब चाहते हो शांति हो जाए, वो वक्त आ गया है, आप भी चाहते हो, परमात्मा भी चाहता है, और आपने एकता भी की है किसी किसी हद तक, लेकिन इसमें आप अभिमान को तोड़ोगे, अगर अपनेपन को खत्म करोगे, तब ये सफल हो जाएगा। इस तरह का उन्होंने संदेश दिया, और फिर तीन मिनट में तो संदेश दिया, फिर जयंती ने उसको आधे मिनट में इंग्लिश में अच्छा ट्रांसलेशन कर दिया। कई महात्माओं का तो बेचारों का ट्रांसलेट हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसको अभ्यास है। अच्छा, फिर दादी जानकी हमेशा आपको पता है साइलेंस पे जोर देती है, तो उस पीरियड के बाद भी दादी जानकी ने, क्योंकि इतना तो नहीं कर सकते थे भी आपका टाइम हो गया पर्सनैलिटी को देखकर, तो दादी जानकी ने उनको बहुत पावरफुल मेडिटेशन समझो 50-60 सेकंड के लिए करवाया। वो जो थी ना शांति की लहर, ईश्वरी शक्ति की, बोलने की बात तो छोड़ो, वो सबके मन में, यानी सारी सभा के मन में ऐसे घुस गई जो एक छाप पड़ गई, समझो परमात्मा का काम संदेशा देने का तो वो पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट डे फिर सम्मेलन चला। अच्छा, उसमें फिर हम लोग तो इकट्ठे ही बैठते थे, और जितना काम अंदर होता था उतना ही काम बाहर होता था। जितने धर्मों के नेता आए हुए थे, चाइना के, इसके, उसके, हम सब ग्रुप बना के उनसे मिलते रहते थे। एक दादी जी का संदेश प्रिंट कराया हुआ था, ब्रह्मा कुमारी स्टेटमेंट, जो हमने प्योरिटी में भी छापा है, वो हम सबको और प्योरिटी अखबार और लिटरेचर बांटते रहते थे, मिलते रहते थे, कार्ड एक्सचेंज करते रहते थे, आप आइए, संस्था का परिचय, ये लगातार काम चलता रहता था। वहां स्थान भी बने होते हैं जहां आप ये लिटरेचर रख सकते हैं। बाकी वो दृश्य ऐसा था, भिन्न भिन्न धर्मों की भिन्न भिन्न आवाजें। एक तो ये था कि हर सेशन प्रेयर से शुरू होता था, प्रेयर से खत्म होता था। वो प्रार्थना को ही बहुत बड़ा समझते हैं कि प्रार्थना बड़ी अच्छी चीज है। एक व्यक्ति था, वो जंगलों में रहा करता था शांति के, उसने तपस्या, उसने जंगलों के जानवरों की बोलियां बोल के दिखाई, यानी जो उसने अभ्यास वहां किया हुआ था। कोई महिला थी, कोई मुसलमान अल्लाह अकबर के हिसाब से बोलते थे, कई चाइनीज और तरह से बोलते थे, मतलब सब बड़े, एक इंडिया की माता है, पता नहीं अम्मा कोई करके है, उसने अपनी भाषा में बोला, पल्ले किसी के नहीं पड़ा, लेकिन उसने बोला, यानी अपने अपना जिसको जो भाषा आती थी वहां तो फ्री था, लेकिन एक चीज थी, रिकॉर्ड था। उन्होंने कहा हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि आज के बाद यूएन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि यूएन में ये सब धर्म नेता आकर के इकट्ठे हुए। यूएन वालों ने भी माना कि राजनीतिक ढंग से हम सिर्फ शांति नहीं कर सकते। दो दिन के बाद ये कॉन्फ्रेंस उस होटल में चली गई जिसका नाम है होटल रेडोल्फ एस्टोरिया। बहुत ही लग्जरी वाला होटल है। उसके पहले पहले जाओ तो मेरा ख्याल इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता एक उसके सेंटर में रखा रहता है, जिसमें तरह तरह के फूल बड़े सजा के रखते हैं। एंट्री पर ही ऐसा है। उसमें हम लोग, क्योंकि सभी धर्म, बहुत सारे धर्म नेता वहां ठहरे भी हुए थे, साथ वाले होटलों के भी आ जाते थे, बहुत सारी बैठने की जगह थी, तो वहां भी हम व्यक्तिगत उनसे मिलते रहते थे। उसके बाद एक लतीशिया शानी जो हमारी है फिलीपींस वाली, वो भी यूएन से कनेक्टेड है, वो भी वहां आई हुई थी। तो उन्होंने मिलकर के एक महिलाओं का ब्रेकफास्ट रखा उस होटल में, तो उसमें हमारी बहनों के लिए रखा था, तो हमारी बहनें उसमें गईं और उन्होंने वहां जितनी महिलाएं उसमें आ सकी सबको संदेश दिया। इसके अलावा टीवी वाले भी इंटरव्यू, वहां की टीवी वाले, इंडिया की टीवी वाले हमें दिखाई नहीं दिए, वहां की टीवी वाले, अखबार, रेडियो वाले इंटरव्यू लेते रहते थे, कई सारे आए हुए थे वहां। अच्छा, इसके बाद वर्कशॉप्स होती थी, तो वर्कशॉप में भी हर धर्म के लोगों को बिठाया जाता था, और उसमें विषय थे कि गरीबी कैसे हटाई जाए और भूला कैसे जाए। उसका भाव यह था कि दो मुल्कों में लड़ाई हुई, उसके बाद सुलह खत्म हो गई, फिर भी बैर का भाव रहता है, उसको कैसे भूला जाए, फिर पर्यावरण को कैसे ठीक किया जाए, और जहां जहां झगड़े चल रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, चार विषय रखे हुए थे। उसके ऊपर उनका डिस्कशन वगैरह चलता रहता था। हिंदू नेताओं ने देखा कि हमें कम चांस मिला है, तो हिंदू नेताओं ने आपस में मीटिंग करनी शुरू की, इसमें मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको चांस मिल रहा है। चांस में वो ये करते थे कि जो पैसा किसी ने ज्यादा दिया हो उनको वॉलंटियर दिए हों, कुछ कारें दी हों, रहने का स्थान दिया हो, या कोई बड़ा प्रसिद्ध हो, उसको कुदरती ज्यादा चांस देते थे। तो कई हिंदू नेता कहते थे, कोई बोलने की क्या बात है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम आ गए हैं, हमारा वाइब्रेशन ही काफी है। कई कहते थे, नहीं, हमें बोलना देना चाहिए। एक सत्यमित्रानंद जी हैं हरिद्वार के, उन्होंने तो सभा में कह दिया कि बोलने नहीं दिया जा रहा, और एक मुसलमान उस सभा में था भाषण करने वाला, उसने कहा आपके देश में हमारे देश के लोगों को नौकरी के लिए बुलाते हैं, लेकिन उन्हें ना मूर्तियां ले जाने देते हैं, ना पूजा करने देते हैं, तो एकता कैसे होगी। इस तरह भी उन्होंने बोला, किसी ने कुछ, किसी ने, एक ने कहा जीसस क्राइस्ट ही दुनिया को रोशनी देगा और कोई नहीं दे सकता, तरह तरह का था, लेकिन सब अपना बोल रहे थे। इस तरह से चौथा दिन भी पूरा हुआ, लेकिन दादी जानकी जी ने क्या किया, वो राखियां ले गई थी, और फर्स्ट डे के बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह योग कराने का या प्रेयर कराने का भी चांस मिलता था। तो कुदरती फर्स्ट डे के बाद वाला मेडिटेशन कराने का चांस भी ब्रह्मा कुमारियों को मिला था। उसमें लोगों को इतनी अच्छी मेडिटेशन लगी कि कईयों ने पर्सनल टाइम मांगना शुरू किया, और कई हिंदुस्तान के व्यक्ति भी जो संस्था को जानते थे उन्होंने पर्सनल टाइम मांगना शुरू किया। तो दादी जानकी का तो वहां कमरा ही था, तो वहां सुबह से शाम तक लोग मिलने आते रहते थे, उनको राखी भी बांधती थी, संदेश भी देती थी, और इस तरह से लगातार सेवा चलती रही। और इस तरह यूएन का ये सेशन चार दिन का पूरा हुआ। उसके पश्चात, उसके सात दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जाना था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपतियों और उसका भी सम्मेलन था, राजनीतिक सम्मेलन। तो ये साधु लोगों को पहले से कहा गया था कि राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर आपका सम्मान करेंगे वहां यूएन में। तो वहां पर हिंदू, जो हिंदू लोग हैं, कोई 8,000 हिंदू न्यूयॉर्क में हैं, तो वो बड़े अमीर हैं। वो कहते हैं कि सारे अमेरिका में अमरीकनों को छोड़कर नेक्स्ट अमीर जो वो हिंदू ही हैं वहां। और उन्होंने बताया हमारी कितने बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज हैं। तो वहां पर एक टापू है, एक बहुत बड़ी नदी है, उसमें एक टापू है, वहां पर उन्होंने ये सम्मेलन एक अलग से रखा प्रधानमंत्री के ऑनर में हिंदुओं ने। विश्व हिंदू परिषद उसका हेड था, तो उसमें दो मंच बनाए गए बड़े बड़े ऊंचे, एक प्रधानमंत्री के लिए, एक धर्म नेताओं के लिए। अच्छा, मेरा नाम तो उन धर्म नेताओं में था 108 में, तो मैं तो उसमें चला गया। अच्छा, और वो अमेरिका की सिक्योरिटी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आना था। अब हमारी बहनें तो कोई गई नहीं, तो मैंने वहां जाकर के जानकी दादी का एक दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया था, वो मैं आपको बताता हूं। वो उन्होंने कहा था बहुत जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाना, वरना नहीं बुलाना, हम फोन का हम बताएंगे। तो वहां पर दो शांति बहन और एक ड्राइवर हमारे साथ बहन गए थे, तो मैंने उनको कहा स्टेज पर पहुंचकर देखो ये बहनों की संस्था है, मुझे चाहे नीचे उतार दो, वो हमारी बहन जी है, उसको यहां बुलाना जरूरी है साधुओं के धर्म नेताओं में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको भी नहीं उतारते, उनको भी बुलाते हैं। तो उन्होंने एक माता को भेजा, वो भी एक सीन था कि 9,000 लोग भारतवासी बैठे हैं बड़े बड़े, और उसमें खास उनको बुलाया गया, फिर उनको उसने सम्मानित करके आसन दिया। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर जब आए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाजपेयी जी, इनके साथ भारत के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह भी थे और भारत के राजदूत भी थे। अब प्राइम मिनिस्टर को असली तो ये था उसको ऊपर आकर साधुओं से आशीर्वाद देना था, लेकिन उसके पैर में कुछ दर्द था, तकलीफ थी, तो वो नीचे आकर के साधुओं के मंच के खड़े हो गए। तो सब साधुओं ने उठकर उनको आशीर्वाद दिया, हम भी उसमें थे। अच्छा, उसके बाद गुजराती माताएं 12 थी, उन्होंने आरती उतारी साधुओं की और प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद वो जाके अपनी स्टेज पर बैठे, उन्होंने पहला भाषण ये किया कि देखो शांति के लिए धर्म नेताओं को बुलाया गया है, हमें नहीं बुलाया गया। शायद लोग ये समझते हैं कि राजनीतिक लोग तो अशांति फैलाते हैं, है? मैं भी आता तो बड़ा अच्छा था, फिर भी मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। फिर उन्होंने भारतवासियों के लिए भाषण किया। उसके बाद उनसे मिलने के लिए था कि कोई भी उनसे मिलना चाहे तो लाइन में लोग जाके मिल रहे थे भारतवासी। उसके बाद उनका भोजन भी था, तो भोजन की कीमत थी $600 प्रति व्यक्ति, है? वो लोग इंडिया, वहां अमरीका में ऐसा ही होता है, हर चीज पैसे से होती है। हम लोगों को फ्री पास था, लेकिन वहां पर प्याज वगैरह हम बना हुआ था, और हम लोग थोड़ी देर घूमे वहां, जिन लोगों से मिलना था मिले, फिर हम लोग आ गए। अब इसके बाद जो बीच में जो 7 दिन थे, तो उसमें एक और संस्था है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। तो वो संस्था रशिया के प्रेसिडेंट गोरबचव ने चलाई हुई है, जो पहले प्रेसिडेंट था, और उसकी 4 मीटिंग 4 देशों में हो चुकी हैं। उसमें भी ब्रह्मा कुमारियां शामिल हैं। तो उसमें ब्रह्मा कुमारियों में ये है कि हमारी ये जयंती बहन और गायत्री बहन और दादी जानकी और एक केन भाई जो है वहां का ब्राजील का, वो भी शामिल है उसमें। तो केन भाई भी उसके लिए आया हुआ था। तो जो ही धर्म नेताओं की खत्म हुई थी, एक और होटल है हिल्टन, उसमें ये चल रही थी। उसमें गोरबचव भी आया था, इंडिया के भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है सोमानी बॉम्बे के, मुझे पता है वो घाटकूपर में भी आए थे, वो थे हिंदुजा थे, इस तरह के लोग थे। तो वो मुझे उन्होंने कहा आप भी इसमें जा सकते हैं, $200 इसका प्रतिदिन का फीस है। तो वो तो मेंबर थी हमारी, मैंने कहा मैं $200 काहे को खर्चूं, मैं मुझे आप बता दिया करो वहां क्या हुआ है। उन्होंने सोचा ये बड़ा भाई आया है, इसको भी ले जाओ। लेकिन एक दिन बहनों ने एक डिनर एक ब्रेकफास्ट रखा, उन्होंने सोचा इतने लोग इसमें आए हुए हैं, एक ब्रेकफास्ट प्रोग्राम रखो उसी होटल में, उसमें $25 प्रति व्यक्ति देना पड़ता है। तो फिर वो फल वगैरह सब चीजें ला के, बहुत हाई क्लास होटल है, उसमें वो एक भाषण की तरह ही होता है ब्रेकफास्ट। तो बहनों ने रखा, 70 लोगों को इन्वाइट किया, 70 लोग ही आए, और उससे पहले मेडिटेशन हुई। उसके बाद उसमें इतने प्रसिद्ध लोग थे, बहुत सारे तो हमारे कॉल ऑफ द टाइम डायलॉग से होके गए हुए थे, कुछ संस्था से परिचित थे, कुछ और देशों में कोऑपरेटिव थे, कुछ नए भी थे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टीफन कोवी, वो बहुत मशहूर है मैनेजमेंट की किताबें लिखने में, उसकी किताबें सारी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, लोग भाषण करते हैं, वो उसमें था। और एक पीटर संगी जो लास्ट टाइम हमारे कॉल ऑफ द टाइम में आया था, वो भी बहुत बड़ा लेखक है, वो भी उसमें था। लटिशिया सानी भी उसमें थी, एक टर्की का भाई मुसलमान है जिसने वहां हमारा सेंटर बनाने में मदद की है, वो भी उसमें था। इस तरह से काफी लोग थे, तो सबकी टेबलों के ऊपर, उसमें हम लोग भी इन्वाइटेड थे। अच्छा, तो वो जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फोरम का सेक्रेटरी है निग्रो, वो भी यहां आबू में होके गया हुआ है किसी वक्त। तो वहां पर स्टेज थी, तो स्टेज पे वो आया, उसने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ने ये इकट्ठा भोजन इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ी सी इकट्ठा भोजन करने की महिमा की, क्यों इकट्ठा लोग भोजन करते हैं। उसके बाद उसने दादी जी का परिचय दिया, फिर उन्होंने संदेश दिया दादी ने, एक उसके बाद जयंती ने ट्रांसलेट किया, फिर मेडिटेशन कराई गई, फिर उनको कहा गया कि आप में से कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। तो 8 व्यक्तियों ने नाम दिए, कुछ तो संस्था को जानने वाले भी थे, तो हर एक ने ब्रह्मा कुमारी की किसी न किसी तरह से महिमा की। एक लेडी थी, उसने कहा उसका काम क्या है, तो जो बच्चे सड़कों पर होते ना, जिनके कोई माँ बाप नहीं होते, ऐसे ही वो अपने चिल्ली देश में वो उनका ध्यान रखती है। तो उसने उसके बहु बच्चे तो बढ़ते ही जाते हैं, उस तरह के लोग उनको छोड़ जाते हैं, तो वो बड़ी अशांत हो गई थी कि इसका उपाय क्या होगा। उसकी डिस्कशन में तो कुछ निकला नहीं। तो एक दिन बहुत टेंस थी, उसने दादी जानकी के पास गई, तो कहा मेरा हाथ आप पकड़ लो। तो दादी जानकी ने उसका हाथ पकड़ के हाथ में लेकर उसको दृष्टि दी, तो उसकी जो टेंशन थी ना वो खत्म हो गई बिल्कुल। उसने सुनाया पब्लिक में कि ऐसे मेरी टेंशन खत्म हो गई, मैं तो बड़ी परेशान थी। इसी तरह से वहां एक बच्चा आया 11 साल का, वो वहां ग्रेजुएशन का इम्तिहान दे रहा है, स्पेशल बच्चा है, अपनी माँ के साथ आया, वो भी शांति के ऊपर बहुत अच्छा भाषण करता है ना, इंग्लैंड का था, तो उसने भी भाषण किया। तो फिर दादी जानकी ने उसको कहा आओ, उसको पकड़ा, उसको प्यार किया, सबको कहा कि सारे बच्चे ऐसे होने चाहिए, फिर हमने उसको अबू का निमंत्रण भी दिया। इस तरह से वो प्रोग्राम जैसे कॉल ऑफ द टाइम ग्रुप की वजह तरफ से था, वो हमारा बहुत ही अच्छा उस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फोरम में हो गया। और उसमें जो था खास तौर पे उसकी लिखित जो थी, एक स्टेटमेंट भी उसमें पढ़ा गया, वो हमने प्योरिटी में छापा है। तो इस तरह से वो प्रोग्राम दोनों मिलाकर के बहुत अच्छे हो गए। इसके पश्चात हम गए वहां एक जो जिसको आप पीस विलेज कहते हैं, कईयों ने सुना हुआ है, तो वहां एक पीस विलेज है, वो न्यूयॉर्क सेंटर से 4 घंटे की मोटर कार से जाते हैं, फिर पहाड़ियां पहाड़ियां आ जाती हैं और वहां झील भी है और बहुत अच्छा वातावरण है। तो किसी ने वहां पर एक शांति का स्थान बनाया था, 300 के करीब उसमें कमरे हैं, 300 एकड़ की जगह है, समझो हमारा यानी दादी जानकी ने आना था इस वजह से उसमें प्रोग्राम रखा हुआ था रिट्रीट, जिसमें साउथ अमेरिका, अमेरिका, कनाडा सबके 250 के करीब बहन भाई आके रहे हुए थे। वहां हमें जाने का मौका मिला तो वहां जैसे ब्राह्मण स्नेह होता है सब मिल करके ब्रह्मा भोजन करते थे, क्लास करते थे, अच्छा योग लगाते थे, आबू जैसा वातावरण था। तो वहां पर हमें कहा गया आप भी एक क्लास कराओ, तो हम ठीक है, हमने क्लास कराई कि ठीक भी ठीक है और गलत भी ठीक है, इस विषय पर हमने क्लास कराई है, राइट इज राइट रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, है ना, ये ड्रामा के ऊपर है पॉइंट। अच्छा तो फिर हमने कराई और कहा उसके बाद वहां के लोग तो फिर वेस्टर्न होते हैं, उनका दिमाग चक्कर में हो गया, गलत कैसे ठीक है, गलत कैसे ठीक है, सब पूछने लगे गलत कैसे ठीक है। मैंने उनको कहा देखो परमात्मा भी जानता है कलयुग है, कलयुग आएगा और घोर होगा, दुख होगा, परमात्मा को पता है, ये भी इसमें बना ही हुआ है, आखिरकार बुढ़ापा भी जिंदगी में बना ही हुआ है, उसको गलत कह के तो अपने को दुखी करते हो, ड्रामा की पॉइंट है, जो होगा ठीक, जो होगा उससे भी, फिर भी उनकी फिर वो प्रश्न करते रहे। फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। मैंने कहा एक था बाप, उसने अपने बच्चे से पूछा 8 को 8 से गुना करो तो कितना होता है, तो उसके बच्चे ने कहा 80। तो बाप ने उसको खूब शाबाश दिया, इतना बड़ा चॉकलेट दिया खाने को, शाबाश बच्चा शाबाश। तो उसका एक मित्र भी बैठा था, उसने कहा ये 8 × 8 = 80 कह रहा है और आप इसको चॉकलेट खिला रहे हैं, इसको थपकी दे रहे हैं, इसको शाबाश दे रहे हैं, हैं? उसने कहा कल इसने 140 कहा था, हैं? तो इसका मतलब हुआ है आज भी रॉन्ग लेकिन कल से तो कम हो गया ना, तो रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। इसके बाद किसी ने मेरे से प्रश्न नहीं पूछा, कहते ठीक है, लेकिन वहां ये स्लोगन बन गया सारा, जरा सी बात हो कहें राइट इज राइट रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, 5-7 दिन उनकी बातचीत में भाषा में ये स्लोगन ही बन गया रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। अच्छा तो दूसरी बात फिर ये हुई कि ये सारे प्रोग्राम करने के बाद अब हम वापस आए, तो वापस भी हमने साधुओं के साथ ही आना था, हमारी इकट्ठी बुकिंग थी, उन्होंने अच्छा प्रबंध किया हुआ था, अमेरिका में भी एक अलग काउंटर था साधुओं के सामान समून ले जाने के लिए, अब सब बैठ के एक दूसरे से परिचित हो चुके थे, घर की तरह हो गए थे। अब क्या हुआ कि जब प्लेन चला फिर उन्होंने वही गौ माता की जय, भारत माता की जय, अच्छा फिर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया सारे ने, अब मुझे तो आवे नहीं, वो सारी माताएं सारे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मैं भी ऐसे ऐसे मुंह हिला रहा हूं जैसे हमारे डांसर हिलाते हैं ना पीछे गाना आता, ये तो लगे नहीं कि भी मैंने नहीं पढ़ा, तो लेकिन वो मैंने देखा सारे वन वॉइस में पढ़ते रहे। अच्छा फिर उसमें तरह तरह के साधु थे, एक ये जो है रोहतक के एक सरदार जी हैं, बाबू भी आए हुए हैं, बहुत मोटे हैं, खूब प्रीतम सिंह या क्या नाम है उसका, साधु हैं, तो वो एक साइड में बैठे थे, तो साधु उसको छेड़े कि तुम इधर आ जाओ नहीं तो प्लेन तुम्हारी तरफ लुढ़क जाएगा, बेचारे को बड़ा हंसी कुदी करते हुए। अच्छा फिर उन्होंने कोई और भजन गाना शुरू किया, इस तरह का ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा कुंभ मेला। फिर जब लंदन में उतरे तो सब ने मेरे से कहा अपने कार्ड दो, मैंने कहा आप भी कार्ड, सब साधु कार्ड रखते हैं, साधु आजकल बड़े फैशनेबल हैं। एक साधु हमने जब स्टेज पर से जब हमने सोचा कि दादी जानकी को यहां बुलाना ठीक नहीं है, इतनी भीड़ है, तो मैंने शांति बहन को कहा कि दादी जानकी ने कहा था मुझे फोन करना तो आप फोन कर दो, तो एक परले कोने में एक साधु था वो मोबाइल फोन से कहीं फोन कर रहा था, तो मैंने कहा इसका फोन ले लेते हैं, तो मेरे सामने वाले साधु को मैंने कहा जरा इससे मोबाइल फोन ले दो, हमने उसने अपने थैले से निकाल के कहता इससे कर लो जी तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही बढ़िया हिसाब है, तो इस तरह के वहां मॉडर्न साधु हैं। अच्छा अच्छा एक वो भाषण क्या करते थे कि स्वामी दयानंद विवेकानंद 108 साल पहले आए थे, अब 108 साल बाद 108 साधु आए हैं, ये सब हम हैं और अब अमेरिका का कल्याण करेंगे। अच्छा, कोई कहता था भारत ने तो सदा जहर ही पिया है, विष ही पिया है, दुनिया के लोगों के पास है ही क्या भारत को देने के लिए, विषी तो है इसलिए हम विष पीते आए हैं। एक था उसने बड़ी पावरफुली कहा कि हमने फलानी धरती जीती वापस कर दी, इसकी जीती वापस कर दी, हम तो हमेशा क्षमा करते आए हैं। एक माता थी हरिद्वार की, संतोषी माँ उसका नाम है, है तो छोटे से कद की, वो भी धीरे 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 इतनी कड़क कड़क के बोली, सीन देखने वाला था, मतलब जैसे कौरव सेना वाले होते हैं अपनी अपनी तूती बजाते हैं, इस तरह से होता रहा। आखिर करते कराते हम आकर के दिल्ली पहुंच गए। सबकी ये जोर थी कि आप उसमें, अच्छा दो उसमें एमपी भी थे साधु, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साधु, और वो बोले कि आप सिर्फ प्रबंध करो, हम सारे साधुओं को लाएंगे। यानी वहां तो ऐसे साधु मुझे कह रहे थे कि आज आप बुलाओ, उसकी पेंट में हमारा ये साधु सम्मेलन फीका लग रहा था। तरह तरह के थे, बंगाली, असामी, ये बुद्धिस्ट, वो कह रहे थे आप बुलाओ सही, हम सब के सब। मैंने कहा भी पता नहीं हमारा क्या पाठ साधुओं के साथ है, पहले मैं अफ्रीका में गया था वहां भी साधु ही साधु थे। अच्छा, अफ्रीका वाले भी मुझे मिले कई, अच्छा उन्होंने वही दोबारा भी आ जाते हैं कई, लेकिन ये इंडियन साधुओं का ग्रुप से बहुत अच्छा इस तरह का वाइब्रेशन आया। फिर उन्होंने मेरे से राय भी मांगी, कुछ उनकी पॉइंट्स थे, मैंने छोटी मोटी राय दे दी, ब्रह्मा कुमारी इसको अलग रखा, अपना अलग बांटा। ये तो हुआ, मेरे ख्याल टाइम ही पूरा हो गया, अब डायलॉग तो हो नहीं सकता है, यही ओम शांति कर देते हैं। अच्छा, कल्चर ऑफिस का, ये भी अच्छा आपने याद कराया, वाह सचमुच। जो कल्चर ऑफ पीस है उसमें आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत के भाई बहनों ने, ब्रह्मा कुमारी ने इसको अपना प्रोजेक्ट मानकर, क्योंकि दादी जी ने भी बहुत प्रेरणा दी थी और इसके मूल्य भी हमारी सेवाओं से मिलते जुलते हैं, और बीके को तो कोई चाहिए सेवा करने के लिए, कोई साधन चाहिए, वो चल पड़ते हैं, है ना, कुछ ना कुछ मिल जाए। और डॉक्टरों वाले डॉक्टरी का करते हैं, इंजीनियर वाले इंजीनियरिंग का, कल्चर ऑफिस तो सब कर सकते हैं, इसलिए ये इतना पॉपुलर हो गया। अब हम लोगों को कहते हैं ना, बंद भी करो तो भी बंद नहीं करते हो। अच्छा, करोड़ों की संख्या में फार्म छपाए हुए हैं, दिल्ली में भी हमने देखा सुबह ही बहने नाश्ता वास्ता करके निकल पड़ती हैं, किसी ने बस स्टैंड पे बूथ बनाया हुआ, कोई अस्पतालों में जाते हैं, कोई पार्क्स में जाते हैं, कोई मंदिरों में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, साइन करवा रहे हैं कल्चर ऑफिस। बल्कि लोग पूछ रहे हैं आपको इसमें क्या मिलता है, कुछ कमीशन मिलता है? अच्छा, कोई कुछ पूछता है इससे हमें क्या फायदा होगा। फिर हमने अंगूठा लगवाने की भी परमिशन ली हुई है, पहली बार यूनेस्को ने अंगूठा लगाने की परमिशन, उनको पता ही नहीं होता अंगूठा क्या होता है। हमने कहा भाई हमारे देश में तो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, और ये कल्चर ऑफिस सारे देश में नहीं जाएगा तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अच्छा अंगूठा लगाएंगे, हम समझाएंगे लेकिन वो अंगूठा लगाएंगे। तो बोले उसके हमें फोटो खास भेजना अंगूठा लगाने के। तो जब मैं यूएसए गया था उस वक्त मैंने एक एल्बम तैयार कर लिया था, हमारे पास तो प्योरिटी के लिए भी बहुत फोटो आते हैं, छांट छांट के कल्चर ऑफ पीस का एक एल्बम तैयार किया था फोटो का, जिसमें बड़े बड़े लोगों के भी थे, अडवाणी जी के, सोनिया गांधी के, जसवंत सिन्हा के, आदि आदि एम्बेसडरों के, और ग्रुप्स के भी थे कि मान लो अहमदाबाद में कंकड़िया के ऊपर वो बहने भरवा रही हैं, मद्रास में रेलवे स्टेशन पर भरवा रही हैं, आबू में भी कुछ लोग भरवा रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स के भी थे, यहां तक कि बंजारों से भरवा रहे हैं, एक किसी ने वैन तैयार किया हुआ है, उस वो भी फोटो थे। एक सेंटर ने तो कसाबी वैल्यूज की प्रदर्शनी भी बना रखी है, जैसे हमारे चित्र होते हैं, वो भी उसमें थे। और एक दूसरा एल्बम था जिसमें हमने गवर्नमेंट से और संस्थाओं से परमिशन ली हुई थी कल्चर ऑफ पीस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ली हुई थी, रेलवे से ली हुई थी, कई जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो सारी भी उसमें लगा रखी थी। फिर उसमें कईयों ने फार्म स्टेटमेंट टाइप के बनाए हुए थे बड़े बड़े, ताकि स्कूलों में इकट्ठे भरवा सकें, और वो भी डाले हुए थे। और फिर हमारे देश की 8-10 भाषाओं में जो छपे थे वो भी सैंपल उसमें डाले हुए थे। तो दो एल्बम हम बना के ले गए थे। तो वहां पर हमने कहा कल्चर ऑफ पीस का, आपने कहा था कि सितंबर में कल्चर ऑफ पीस का देना है यूएनएस्को को, तो क्या होना है? तो हमारी बहनों ने जाकर क्योंकि हमारा तो वहां परमानेंट ऑफिस है यूएनओ में, हमने कहा पूछो, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि कल्चर ऑफ जो पीस डे होता है वो 5 सितंबर होता है, लेकिन इस साल उन्होंने पीस डे को मिलेनियम पीस डे करके ना नई शताब्दी वाला, तो उसको उन्होंने 17 या 19 सितंबर रखा है, मेरा ख्याल है 17 सितंबर था, इस दिन होगा। हमने कहा क्या होगा, तो उन्होंने कहा सारा पूछ पाछ के बताया, उस दिन सारा सुबह से लेकर दोपहर बाद तक ये प्रोग्राम कल्चर ऑफ पीस का चलेगा, यूनेस्को वाले आएंगे और यूएन का सेक्रेटरी जनरल की पत्नी उसमें आएगी, प्रेस वाले आएंगे और जो यूएन की जनरल असेंबली का वर्तमान प्रेसिडेंट है वो आएगा, एक दो देशों के और बड़े बड़े नेता भी आएंगे और 250 बच्चे बुलाए जाएंगे जो न्यूयॉर्क के आसपास के हैं, उनको लिए बड़े कंपटीशन वगैरह रखे जाएंगे। 1 मील लंबा कोई कपड़ा है जिसके ऊपर सब लोगों ने साइन कर रखे हैं कल्चर ऑफ पीस के, सारी दुनिया के, वो भी वहां पेश किया जाएगा। ऐसे कई सारी चीजें उसमें थी, कोई नृत्य पेश किए जाएंगे। उसके बाद 4 देशों के लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा कल्चर ऑफ पीस के इकट्ठे किए हैं, उनके बच्चे उन्हीं देशों के, वो आके अपना मिनट्स जो है कल्चर के सिग्नेचर वो सेक्रेटरी वो जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है उसको पेश करेंगे। साथ में एक देश की फर्स्ट लेडी भी थी। अच्छा, ये तो हमारे आने के बाद होना था क्योंकि हम तो जल्दी आ गए थे। तो हमने फिर उन्होंने कहा वो कन्या इंडियन होनी चाहिए, हमने कहा इंडिया की सबसे ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने मान लिया। पहले वो कह रहे थे इंडिया का राजदूत, इंडिया से गवर्नमेंट से पूछे तब करेंगे, कुछ नहीं। तो एक इंडिया, एक ब्राजील, एक कोलंबिया और एक अल्जीरिया, ये सब देशों ने मिलकर सबसे ज्यादा मिनट्स इकट्ठे ये साइन इकट्ठे किए। 3 करोड़ भारत के थे और 3 करोड़ बाकी तीनों के मिला के थे, तो 6 करोड़ सिग्नेचर वहां पेश हुए, होने थे अब हो गए हैं। अच्छा, और होने थे वैसे 10 करोड़, इसलिए यूनेस्को वालों ने ये फैसला किया कि ये जो पेश किया जा रहा है ये फाइनल नहीं है, अभी दिसंबर तक इसको और चलाना है, लेकिन इस वक्त भी पेश होना है। तो वहां न्यूयॉर्क में कन्या है, एक इंडिया का परिवार है जो जम्मू कश्मीर का है, वो वहां पर पति पत्नी नौकरी करते हैं, उनकी एक बच्ची है 12-13 साल की, उसका नाम है पूर्णिमा, पूर्णिमा सेठी, उसकी माँ का नाम है पूनम। पहले तो मैंने पूछा पूनम और पूर्णिमा में क्या फर्क होता है, भाई बताओ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बोले ये माँ है ये बेटी है। अच्छा, तो जो पूर्णिमा है वो वहां की अमरीका की पैदा हुई है, बड़ी चुस्त कन्या है, खूब इंग्लिश फटाफट बोलती है और मॉडर्न तरह की है वो ज्ञान की। तो उसने हमने कहा कि तुझे हम समझा देते हैं, इंडिया से कौन बहन को मंगवाएगा और छोटी उम्र की बहनों को पासपोर्ट नहीं देते, तुम हमारी तरफ से करना। तो कहती मैं नहीं करूंगी। हमने कहा क्यों, कहती मैं तो अमृत वेला नहीं करती। मेरे से उन्होंने पूछ लिया कि तुम अमृत वेला करती हो तो मैं क्या कहूंगी, मैं तो झूठ नहीं बोलती है। हमने कहा नहीं, वो यूएन वाले तुम्हारे से, उनको तो पता भी नहीं अमृत वेला क्या होता है, तुम्हें झूठ कुछ नहीं बोलना। 2 दिन तो उसको मुझे मनाने में लगे कि तुमने करना है, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे होते हैं वहां के। जब मैंने कह दिया कि तुम्हारे से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, तुम अमृत वेला करती हो या नहीं, ये पूछा जा सकता है, तुम ब्रह्मा इतनी छोटी उम्र में ब्रह्मा कुमारी में कैसे इंटरेस्टेड हो गई, तो कह देना मेरे माता पिता इसमें आते हैं, मैं भी आती हूं, और नहीं पूछेंगे, बाकी कल्चर ऑफ पीस के पूछेंगे। तो कल्चर ऑफ पीस के उसको मैंने सारा समझाया कि ऐसे ऐसे इकट्ठे हुए हैं, ये भिन्न भिन्न प्रांतों से इकट्ठे हुए हैं और ये फोटोज हैं, और तो इस तरह से उसके बाप को भी पास बिठाया। फिर बोली मेरे पिताजी भी मेरे साथ चले तब मैं जाऊंगी। अच्छा, हमने कहा भले चले जाए, उसमें कोई मना नहीं है। ऐसे करके उसको तैयार किया, वो एल्बम दिए। फिर हमने इंडिया में आकर एक बहुत अच्छा उसका एनालिसिस करवाया कि भाई जितने जिन्होंने साइन किए हैं उसमें पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं, और बड़े रंगीन ढंग से उसका बनाया गोला। फिर किस किस आयु वालों ने कितने कितने साइन किए हैं, ये हमने सेंटरों से सैंपलिंग मंगवाई थी। ये मान लो 12 से 18 वर्ष वाले कितने हैं, 18 से 24 ऐसे, उसको भी हमने फोटो यानी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किया। फिर उसके बाद उसमें ये था कि कितने मैन आवर्स इसमें लगे हैं। अच्छा, पढ़े अनपढ़े का भी उसमें रेशो बनाया गया, अनपढ़े सिर्फ 2-2.5% है, उसमें कितने हमारे वॉलंटियर, कितना टाइम उसमें लगा, वो उसका भी चार्ट बनाया गया। उसके अलावा दो तीन पेज लिखित बनाई गई कि कहां कहां से हमने कैसे कैसे ये इकट्ठे किए हैं सिग्नेचर, वो सारा बना के फिर न्यूयॉर्क में भेजा गया। अच्छा, इसके द्वारा, ईमेल के द्वारा, तो क्या तुम इसको अपना अपने वहां उसी तरह से बना लो। वो सारा फिर उस बहन ने पेश किया वहां, उसकी हमें सूचना आई, हम पूछते रहे क्या हुआ। उसका फोटो भी आया है लेकिन लेट आया है। इस प्योरिटी में हमने उसका रिपोर्ट तो छाप दी है कि अभी कब गई, किसको दिया, क्या किया। हम चाहते थे फोटो भी इसका आ जाए लेकिन वो लेट आया है, वो अगली बारी छपेगा। और अब इसका इतना प्रभाव तो यूएन वालों पर हो गया कि ब्रह्मा कुमारी ने इतने सिग्नेचर इकट्ठे किए जो सब संस्थाओं ने दुनिया की ने मिला के भी नहीं किए। दूसरी बात, इंडिया में हमने आकर यूनेस्को जो यहां इंडिया का है उसको भी वो दिया, तो इतने खुश हो गए, इतने बोले इसका तो बहुत बड़ा फंक्शन होना चाहिए, हम इसका फंक्शन करेंगे। और हमने कहा एक यूएन दूसरा भी दफ्तर है उससे मिलकर करो, उसको भी हमने कहा, दोनों ने कहा हम फंक्शन करेंगे। लेकिन यहां पर एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है जिसके अंदर ये यूनेस्को काम करता है, नेशनल कमीशन होता है, उसका एजुकेशन मिनिस्टर हेड होता है, सेक्रेटरी वगैरह सब होते हैं, वो सब हमको जानते हैं। राखी पर हमने उनको दिखाया भी था इतने सिग्नेचर इकट्ठे हो गए। अब हमने जाकर उनसे मिलकर, दादी जी ने ये कहा है इसको राष्ट्रपति के द्वारा उसको पेश किए जाए ये सिग्नेचर। तो अब ये कोशिश हो रही है कि जब दादी जी दिल्ली में जाएंगी, आपको पता 29 अक्टूबर को फाउंडेशन ले करने, तो 30 अक्टूबर को इस प्रकार का कार्यक्रम रखा जाएगा, या तो राष्ट्रपति के घर में रखा जाएगा, राष्ट्रपति के घर में फिर थोड़े लोग इनवाइट होते हैं, या फिर पब्लिक में रखा जाएगा। पब्लिक में रखेंगे लोग ज्यादा आ जाएंगे, राष्ट्रपति के आने की संभावना कम हो जाती है। अब आज हमने ये फैसला किया कि दोनों ही रखेंगे, राष्ट्रपति के घर में छोटा रखेंगे और पब्लिक का शाम को बड़ा रखेंगे। तो जो सिग्नेचर सब ने इकट्ठे किए हैं उसकी बहुत अच्छी, उस समय सब अखबार अखबार वालों को बुलाकर, टीवी वालों, खूब वैसे भी पब्लिसिटी उसकी हो ही रही है, सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सब इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि सेवा है, लेकिन और भी ज्यादा इसका फल निकलने वाला है। ओम शांति।